नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन आर्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, वर्चुअल डिविएशन, एएल ट्रैवर्सकी की गैमलेट और लिट आरपीजी सर्वनाश फैंटेसी श्रृंखला की दूसरी लघु कड़ी है। उपलब्ध प्रकाशकीय विवरण के अनुसार कहानी शुरुआती प्रलय के लगभग 36 घंटे बाद शुरू होती है। नायक नील और उसका छोटा दल एक अवकाश द्वीप पर आरंभिक विनाश, उत्परिवर्तित जीवों की पहली लहर और अनियंत्रित बचे हुए लोगों के खतरे से गुजर चुका है। फिर भी एक साथी की मृत्यु यह स्पष्ट करती है कि शुरुआती स्तर वृद्धि पर्याप्त सुरक्षा नहीं देती। कथा का केंद्र एक ऐसी दुनिया है जो किसी आभासी खेल प्रणाली की तरह रीसेट हुई प्रतीत होती है, जहां जीवित रहने के लिए लड़ाई, स्तर बढ़ाना और दल का समन्वय अनिवार्य है। साथ ही नील के निजी संबंधों, ईर्ष्या और उभरते बहु संबंधों का तनाव भी दल की स्थिरता को प्रभावित करता है। उपन्यासिका इस प्रश्न को खुला रखती है कि इस कठोर प्रणाली को किसने बनाया, कौन नियंत्रित कर रहा है और क्या इसका प्रभाव केवल द्वीप तक सीमित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रलय के बाद आरंभिक जीत की सीमाएं। इस कड़ी का प्रमुख तनाव इस तथ्य से बनता है कि नील का दल प्रारंभिक संकट पार कर चुका है, पर सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाया है। उन्होंने पर्याप्त शुरुआती प्रगति की है ताकि उत्परिवर्तित प्राणियों की पहली लहर और कुछ हिंसक बचे हुए लोगों का सामना कर सके, लेकिन दल के एक सदस्य की मृत्यु उनके अनुभव को जीत की कहानी बनने से रोक देती है। यह लिट आरपीजी ढांचे का उपयोग करके एक सीधी बात कहती है, स्तर, क्षमता और शुरुआती संसाधन उपयोगी है, किंतु वे जोखिम समाप्त नहीं कर पे। नई व्यवस्था में खतरे बढ़ते जाने की चेतावनी भी यही संकेत देती है कि स्थिर रहना पीछे हटने के बराबर है। कथा का सर्वाइवल पक्ष केवल राक्षसी मुकाबलों तक सीमित नहीं दिखता, दल को अपनी गलतियों, हानि और सीमित शक्ति का अर्थ समझते हुए आगे की तैयारी करनी है। लघु आकार के कारण उपन्यासिका लंबे प्रशिक्षण वर्णनों के बजाय तत्काल दबाव पर जोर देती प्रतीत होती है। पाठक को ऐसे संसार का अनुभव मिलता है जहां प्रत्येक उपलब्धि अस्थायी है और अगला चरण अधिक तैयारी मांगता है। यह दृष्टि इसे केवल शक्ति कल्पना से अलग करती है, क्योंकि प्रगति का मूल्य उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी और विफलता की संभावना से तय होता है। दूसरा, तेज स्तर वृद्धि को सामूहिक अनुशासन से जोड़ना। उपलब्ध विवरण में बार बार यह बात उभरती है कि नील अकेले बचकर नहीं निकल सकता, उसे दल के सभी सदस्यों को एकजुट करना होगा, अधिक कठोरता से लड़ना होगा और स्तर वृद्धि की गति बढ़ानी होगी। इसलिए पुस्तक में प्रगति केवल व्यक्तिगत अंक या युद्ध कौशल नहीं, बल्कि सामूहिक क्षमता का प्रश्न है। यदि दल के कुछ सदस्य तैयार हों और कुछ पीछे रह जाएं, तो पूरी टीम कमजोर पड़ती है। यह गैमलेट की परिचित प्रगति भाषा को संकट प्रबंधन के ढांचे में रखता है। स्तर बढ़ाना यहां भविष्य की अनिश्चित चुनौतियों के विरुद्ध समय पर क्षमता बनाने का साधन है। दल को यह भी तय करना पड़ता है कि जोखिम कैसे बांटे जाए, कौन लड़ाई के लिए तैयार है और हानि के बाद मनोबल कैसे संभाला जाए। प्रकाशकीय सारांश किसी विस्तृत नियम पुस्तिका या विशेष आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता, इसलिए इसकी प्रणालियों को अत्यधिक तकनीकी मानना उचित नहीं होगा। फिर भी स्पष्ट है कि कहानी की गति इस दबाव से संचालित है कि विकास तेज होना चाहिए, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। इसीलिए पुस्तक का लिट आरपीजी तत्व कथानक की सजावट नहीं, जीवित रहने की तात्कालिक शर्त बनता है। तीसरा, द्वीप का सीमित भूगोल और व्यापक रहस्य का तनाव। कहानी का परिवेश एक अवकाश द्वीप है जो प्रलय के बाद एक बंद और दबावपूर्ण मंच बन जाता है। इस सीमित स्थान का अर्थ है कि नील और उसके साथी किसी विशाल दुनिया में तुरंत गायब नहीं हो सकते। उन्हें उन्हीं खतरों, उन्हीं बचे लोगों और उसी बदलती व्यवस्था के बीच निर्णय लेने हैं। द्वीप की सीमा कथा को व्यावहारिक बनाती है, क्योंकि भोजन, आश्रय, सुरक्षित रास्ते और स्थानीय नियंत्रण जैसे प्रश्न निकट महसूस होते हैं। दूसरी ओर, नील के सामने बड़ा रहस्य है। क्या यह रीसेट केवल उनके छोटे द्वीप पर हुआ है या पूरी पृथ्वी पर, और इस दिखने में दुष्ट प्रणाली का निर्माता या नियंत्रक कौन है? ये प्रश्न कथानक को तत्काल युद्धों से आगे ले जाते हैं। पाठक के लिए अनिश्चितता दो स्तरों पर काम करती है। दल को अभी जीवित रहना है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं मालूम कि बाहरी दुनिया सहायता, अधिक खतरे या बिल्कुल अलग वास्तविकता रखती है। पुस्तक उत्तरों की बजाय खोज की दिशा पर अधिक केंद्रित दिखती है। यही सीमित भूगोल और विशाल अज्ञात का विरोधाभास उपन्यासिका में बेचैनी बनाए रखता है। चौथा, ईर्ष्या और निजी संबंधों को दल की उत्तरजीविता समस्या बनाना। वर्चुअल डिविएशन अपने सर्वनाश और प्रगति केंद्रित ढांचे में संबंधों के तनाव को भी शामिल करती है। नील का अपनी पूर्व साथी और उसके नए शत्रुतापूर्ण प्रेमी के साथ जीवन रीसेट का सामना करना निजी इतिहास को सीधे जीवित रहने की परिस्थिति में ले आता है। इसके अतिरिक्त नील के आसपास उभरते बहु संबंधों में ईर्ष्या की समस्या का उल्लेख है, यह पहलू पुस्तक के हरेम फैंटेसी उपशीर्षक से जुड़ा है, जिसमें वयस्क विषय और अपरंपरागत संबंध शामिल होने की सूचना दी गई है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इसे किसी आदर्श संबंध मार्गदर्शिका की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। इसका कथात्मक काम अधिक स्पष्ट है। भावनात्मक असहमति दल की एकजुटता को कमजोर कर सकती है, ठीक उस समय जब हर सदस्य को सहयोग चाहिए। नील के लिए चुनौती केवल अनेक लोगों की रक्षा करना नहीं, बल्कि उनके बीच भरोसा और साझा उद्देश्य बनाए रखना भी है। इस तरह निजी इच्छाएं, पुराने विवाद और प्रतिस्पर्धा बाहरी राक्षसी खतरे के समानांतर आंतरिक खतरा बनते हैं। यह संयोजन उन पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है जो लिट आरपीजी में केवल युद्ध कम नहीं, पात्रों के बीच तनाव और संबंध आधारित संघर्ष भी चाहते हैं। अंत में लघु उपन्यासिका में तीव्र श्रृंखलागत गति, प्रकाशकीय जानकारी इसे लगभग 23,000 शब्दों की गैमलेट विज्ञान कथा उपन्यासिका बताती है। यह आकार पाठक की अपेक्षा तय करने में महत्वपूर्ण है। यह विस्तृत महागाथा या पूर्ण विश्व व्याख्या देने वाली लंबी लिट आरपीजी नहीं है। इसके बजाय यह श्रृंखला के आरंभिक प्रलय के तुरंत बाद की स्थिति को आगे बढ़ाने वाली तेज कड़ी है। शुरुआत में दल ने पहली लहर झेली है, फिर हानि, बढ़ते खतरे और संबंधों के टकराव उन्हें अगली प्रगति के लिए बाध्य करते हैं। इस संरचना में घटनाएं शीघ्रता से आगे बढ़ने की संभावना रखती है, क्योंकि कथा को सीमित शब्दों में संकट, युद्ध और रहस्य की दिशा बनाए रखनी होती है। साथ ही यह पुस्तक पहली कड़ी के बाद पढ़ने पर अधिक अर्थपूर्ण होगी, क्योंकि नील के दल, उसके पूर्व संबंध और आरंभिक कयामत की स्थिति पहले से स्थापित है। श्रृंखला का तीसरा भाग द्वीप छोड़ने और बंदरगाह तक पहुंचने की योजना का संकेत देता है, जिससे दूसरी कड़ी को एक संक्रमण बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। इसका लाभ निरंतरता पसंद करने वाले पाठकों को है। वे लंबे विराम के बिना यह देख सकते हैं कि आरंभित बचाव धीरे धीरे अधिक संगठित पलायन और व्यापक जांच में कैसे बदलता है। निष्कर्ष में वर्चुअल डिविएशन एक तो उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो तेज गति वाली गैमलेट या लिट आरपीजी सर्वनाश कथा चाहते हैं, विशेषकर वे जो श्रृंखला की पहली कड़ी पढ़ चुके हैं। इसका मुख्य आकर्षण किसी अत्यंत विस्तृत खेल नियम प्रणाली का प्रमाणित विवरण नहीं, बल्कि सीमित समय और सीमित स्थान में बढ़ते दबाव का संयोजन है। नील का दल आरंभिक लहर से बच चुका है, पर एक मृत्यु और भविष्य के बढ़ते खतरों के कारण उन्हें अपनी प्रगति को पर्याप्त नहीं मानना चाहिए। यह परिस्थिति पुस्तक को केवल विजय और शक्ति बढ़ाने की कथा बनने से बचाती है। दल समन्वय, जोखिम, पुराने संबंधों का तनाव और ईर्ष्या सभी उत्तरजीविता को प्रभावित करने वाले कारक बनते हैं। हरेम फैंटेसी और वयस्क विषयों के कारण यह सभी फैंटेसी पाठकों के लिए नहीं है, लेकिन इस उपश्रेणी में रुचि रखने वाले पाठकों को यह व्यक्तिगत संबंधों और सर्वनाशकारी खेल जगत का सीधा मेल मिलेगा। लगभग 23,000 शब्दों की उपन्यासिका होने के कारण यह त्वरित श्रृंखला केंद्रित पाठन अनुभव देने की स्थिति में है, न कि स्वायत्त और व्यापक विश्वकोशीय कथा। समान लिट आरपीजी पुस्तकों की तुलना में इसका अंतरद्वीप पर फंसे छोटे दल, रहस्यमय जीवन रीसेट और संबंधों की अस्थिरता को एक ही तात्कालिक संकट में बांधने में है। इसे प्रगति फैंटेसी, जीवित रहने की चुनौती और वयस्क संबंध प्रधान कथानक के संयोग के रूप में पढ़ना सबसे उपयुक्त होगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं अल्ट्रावर्स की, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।